तफसीर 20 से लेकर 34 तक, इसमें क्या बात बताई जा रही है? दलाइल से अल्लाह की शुक्रगुजारी की दावत दी जा रही है, और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत जो है सरे फहरिस्त जो बात कही गई थी वो क्या थी कि अल्लाह वाहिद की शुक्रगुजारी की जाए, है ना। अगर आप हजरत लुकमान की नसीहत को याद करें तो उसमें क्या था, अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की, क्यों? अनिश्कुर लिल्लाह, कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार हो। तो अल्लाह की शुक्रगुजारी इतनी जरूरी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि यही बंदगी का निचोड़ है, आफाक और अनफुस, कायनात से और अपने वजूद से जो है इसके दलाइल मिल सकते हैं अगर लोग गौर करें। और अहले मक्का क्या कर रहे थे? निशानियों का मुतालबा कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन आयात में एक तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, आपको सबर की तलकीन की, और दूसरी तरफ ये कहा कि मुखालिफीन का फैसला मुझ पर छोड़ दो, इनका फैसला हम करेंगे जो कायनात की निशानियां और अपने वजूद की निशानियां देखने के बाद ईमान नहीं लाते, तुम इनकी परवाह ना करो। इनकी परवाह ना करो। और फिर साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि अगर ये अल्लाह की अतात का दम नहीं भरते, ये अल्लाह से वफादारी का ऐलान नहीं करते, तो अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह की हम्द तो सारे दरख्त कलम बन जाए, सारे समंदर स्याही बन जाए, फिर भी वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां बहुत हैं और अल्लाह खुद काबिले सताइश है। और फिर आखिर में क्या बात कही गई कि आखिरत की जवाबदेही का एहसास पैदा किया जाए, ये बात ना पूछी जाए कि कयामत कब आनी है, गैब का इलम कोई नहीं जानता। आइए इस पस से मंजर में आज की आयात, आज के सबक को समझते हैं। बड़ी खूबसूरत आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करते हैं और सवालिया अंदाज हमेशा सोचने समझने पर आमादा करता है। अलम तरो, क्या तुम नहीं देखते, क्या तू नहीं देखता? अलम तरो यहाँ पे जमा है, क्या तुम लोग नहीं देखते? अन्नल्लाह सख्खरा लकुम, ये कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए। तो तरो भी जमा के लिए है और लकुम तुम सब के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को जो है सोचने समझने की दावत देते हैं और उसके बाद शुक्रगुजारी के दलाइल देते हैं। क्या कहते हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम नहीं देखते? नहीं देखते के माने क्या है कि तुम सोचते नहीं हो, तुम गौर नहीं करते। अन्न अल्लाह सखर लकुम, अल्लाह ने मुसखर कर दिया तुम्हारे लिए माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो जमीन में है। आसमान और जमीन का जर्रा जर्रा, आसमान और जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ लोगो, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि सारी चीजें तुम्हारे काम आ रही हैं, सारी अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत पर लगा दी हैं। किसी भी चीज के बारे में तुम ये दावा नहीं कर सकते कि तुम इसके खालिक हो या मालिक हो, या तुम्हारी वजह से वो तुम्हारी खिदमत कर रही हैं। तो फिर तुम जो है अपने माबूदों को मेरे साथ शरीक क्यों करते हो? और यहाँ पे जो सखरा है, इसके दो मानी हैं, क्योंकि किसी चीज को मुसखर करने की दो शक्लें हो सकती हैं। एक ये कि वो चीज इसके ताबे कर दी जाए और उसे इख्तियार दे दिया जाए कि जिस तरह चाहे वो इसका इस्तेमाल करे, है ना। दूसरी जो है मुसखर करने के ये शक्ल होती है कि इस चीज को किसी जाब्ते का पाबंद बना दिया जाए जिसकी वजह से वो उसके लिए नाफे हो जाए और वो उसके मफाद की खिदमत करते रहे। जैसे जमीन और आसमान की तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो है वो मुसख़्ख़र कर दिया है। कैसे? बाज चीजें ऐसी हैं हमारे सुपुर्द कर दी हैं, जबान है, आंख है, नाक है, हाथ पांव है, मुंह है, जैसा मर्जी हम उसे काम लेते हैं। बहुत सी चीजें हैं तो बाज चीजें पहली किस्म में आती हैं कि हमारे ताबे हैं, वो हम अपनी मर्जी से जैसे चाहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरी किस्म है उसमें आता है कि उन चीजों को अल्लाह ने एक जाब्ते का पाबंद बनाया है, लेकिन बनाया हमारे लिए है कि हमारे लिए वो नफामंद है। मसलन हवा है, पानी है, मट्टी, आग, नबातात है, मादनियात है, फिर मवेशी हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि पानी जो है वो हम अपनी मर्जी से भी उसका इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अल्लाह की मर्जी से फिर चलता है, वो अल्लाह के ताबे होता है, फिर हमारी मर्जी के ताबे नहीं होता। तो बाज़ चीजें दोनों तरह भी हैं, आग हमारी मर्जी के तहत भी है, और वैसे कभी आग भड़क उठती है, फिर वो अल्लाह के कानून की ताबे होती है, फिर हमारा वो कहना नहीं मानती, है ना। इसी तरह मवेशी ये हमारी मर्जी के ताबे हैं वैसे, लेकिन अगर कोई दरिंदा हो तो अलग बात है, सही है ना। तो बहरहाल सूरज चांद ऐसे हैं जो अल्लाह ने मुसख़्खर किए हैं, और दिन और रात ये खास तौर पर दूसरे मानी में आएंगे कि हमारे लिए नफा मंद तो हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से इनको कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए मुसख़्खर कर रखा है। तो जब इन नेमतों का हमारे अंदर एहसास पैदा होगा तो फिर हमारा रवैया क्या होगा, फिर हमारा रवैया ये होगा कि जब सारी चीजें अल्लाह ने हमारी खिदमत पर वक्फ कर दी हैं, हमारे लिए वो काम करती हैं, हमारे वो ताबे हैं, हम अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहते हैं करते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अल्लाह का फरमाबरदार बन जाना चाहिए, शुक्र गुजार होना चाहिए। वअज़बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, वअज़बगा और मुकम्मल कर दी हैं और तमाम कर दी हैं। तो अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए मुकम्मल की हैं वो कमाल दर्जे की हैं। नेमतें जो मुकम्मल की हैं क्या हैं? कमाल दर्जे से नेमतों को मुकम्मल किया है। नेम का लफ्ज जो है ये इस जिन्स है, छोटी बड़ी वाहिद जमा मुजक्कर मुअन्नस हर तरह की नेमतों के लिए आता है। खुली नेमतें भी हैं, छुपी नेमतें भी मुराद हैं। कुछ नेमतें हमें महसूस होती हैं और कुछ नेमतें हमें महसूस भी नहीं होती, कुछ को हम देखते हैं कुछ को हम देख भी नहीं पाते, है ना। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें हैं, जाहिरी हैं बातनी हैं, वो सारी नेमतें अल्लाह ताला ने जो है वो असबगा कर दी हैं। और असबगा के मानी क्या है? वसी और कुशादा कर दी, असबाग के मानी में है, मुकम्मल की हैं, वसी की हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी जमीन को भी कहते हैं जो खुली और कुशादा हो, सबगा। तो फिर यहां पे असबगा के मानी खुले और कुशादा के हैं, और यहीं से उधार के मानी लेकर ये लफ्ज इतमाम और तकमील के मफहूम में इस्तेमाल होने लगा कि उसने तमाम नेमतें हम पर जो हैं वो कुशादा की हैं, उनको वुसअत दी है। देखिए जाहिरी नेमतें भी हैं, मादी नेमतें भी हैं, और रूहानी नेमतें भी हैं और अकली नेमतें भी हैं। मसलन शक्ल और सूरत अल्लाह ताला ने हमें दी, ये नजर आती है। कदो कामत हमें अता किया, ये हमें नजर आता है। हाथ पांव, खाना लिबास सब चीजें नजर आती हैं, लेकिन अकल नजर नहीं आती, है ना। इसी तरह आंखों के अंदर जो बसीरत है, दिल के अंदर जो बसीरत है, ये नजर नहीं आती। इसी तरह हदायत की नेमत है, ये भी अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि कोई मादी या रूहानी नेमत अल्लाह के सिवा किसी और ने भी दी है। तो जब तमाम नेमतों का देने वाला अल्लाह ताला है, तो फिर अल्लाह ही शुक्र गुजारी और न्याजमंदी का हकदार है, बिला किसी दलील के। दूसरा अल्लाह की शुक्र गुजारी में साजी कैसे बन सकता है? वअसबगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर मुकम्मल कर दी। तो खुली का भी पता चल गया आपको कि खुली से मुराद वो नेमतें जो हम सबको नजर आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो मादी नेमतें हैं, और बातिना से मुराद वो नेमतें हैं जो नजर नहीं आती, जिसमें हदायत है, अकल है, बसीरत है ना। तो صلاحیتیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, مگر لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے. ساری نعمتیں پانے کے بعد آسمان زمین کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ اس کے اندر ہے انسان کی خدمت کرے, انسان کی تابے داری کرے, انسان کے ساتھ وفاداری کرے, اور افسوس کہ پھر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ, سب نہیں, من جو ہے یہاں پہ تبیز کا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ, مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, بغیر علم, بغیر کسی علم کے, کوئی علم نہیں ہے جھگڑے کی بنیاد, ان کے پاس کوئی دلیل تھوڑی ہے, وَلَا هُدًى, اور نہ ہی ہدایت ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, وَلَا كِتَابٍ مُنِير, نہ ہی ان کے پاس کوئی روشنی دکھانے والی جو ہے وہ کتاب ہے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے تھے, توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے, ہے نا, ایک خدا نہیں ہے, بہت سے خدا ہیں, اور وہ اپنے معبودوں کو توحید میں شامل کرتے تھے, شرک کرتے تھے, اور جھگڑے اور بحثے کرتے تھے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر علم, نمبر ایک کہ کوئی ذریعہ علم ان کے پاس نہیں ہے کہ جس سے ان کو پتا چلے کہ تحقیق یا مشاہدے یا تجربے سے ان کو یہ بات پتا چلی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے. تو علم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, جہالت. دوسرا کیا ہے, ولا ہدن, ہدن کیا ہوتا ہے, ہدایت. جیسے کوئی لیڈر رہنما ہوتا ہے نا, جس کی رہنمائی میں انسان حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہادی نہیں ہے جنہوں نے ان کو رہنمائی دی ہو, نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ہدایت ہے, کوئی رہنمائی نہیں ہے, کوئی ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. اور جب ہادی کی ہدایت بھی نہیں ہے تو تیسری بات کیا ہے, ولا کتاب منیر, اور نہ ہی کوئی کتاب ہے جو کہ روشن ہو. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے پاس کسی روشن کتاب کی سند بھی نہیں ہے. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. معنی کیا ہے کہ نہ تو کوئی روشن کتاب کی نقلی دلیل ہے کہ کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جس کو پڑھ کر انہوں نے بتا دیا, نہ کوئی عقلی دلیل ہے, نہ کوئی صحیفہ آسمانی ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس, اور پھر شرک کرتے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا, کہ پیروی کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے کہ پیروی کرو, مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا ہے, قَالُوا, وہ کہتے, بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو وہ کہتے کہ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ. اب آپ دیکھیں کہ رسول کا بلانا اور ان کا جواب دینا, بل نتبعہ, ہم پیروی کریں گے, ما وجدنا, جس پر ہم نے پایا ہے, ما وجدنا علیہ, جن رسموں پر, جس مذہب پر, جس طور طریقے پر ہم نے پایا ہے, آباءنا, اپنے باپ دادا کو, کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم اللہ کی نازل کردہ جو کتاب ہے اس کو نہیں مانیں گے. کتاب کو نہ ماننا رسول کا انکار, قرآن کا انکار, فرشتوں کا انکار, فرشتے لے کر آئے نا کتابیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آتے تھے, پھر اللہ کا انکار, یعنی ایک انکار کئی انکار پر جو ہے وہ جا کے رکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے, اور آج بھی مسلمان یہ کہتے ہیں, کافر تو کہیں ہی, اپنے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں شادی بیاہ کے اندر جو رسمیں بنائی ہوئی ہیں اور اس پر ہزاروں روپے اور ڈالر جو خرچ ہوتے ہیں, اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ دوسری طرف مسلمان افلاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اَوَلَوْ, اگرچہ, لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ, کہ شیطان جو ہے, یدعوہم, بلاتا ہے ان کو, अगर शैतान अगरचे शैतान बुलाता हो इनको इला अजाब सईर, आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता हो। और अजाब कैसा जो भड़कता हुआ है, आग कैसी जो कि भड़कती हुई है, इसके मानी क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बता रहे हैं कि हर शख्स जो है वो ये कहता है कि मैं अपने खानदान और बाप दादा के पीछे चलूंगा, और बाप दादा के जमाने से शिर्क होता चला आ रहा है, अब ये कहते हैं कि हम भी वही करेंगे। तो ये कितनी नादानी की बात है कि बाप दादा अगर गुमराह हैं, वो आंखें बंद करके जिस रास्ते पर चल रहे थे, तो अगर ये भी उस पर चलेंगे तो होगा क्या? एंड उसका जलती हुई आग है ना कि वो तो जहन्नुम में जाएंगे, तो क्या ये भी आंखें बंद कर अपने बाप दादा के पीछे जो है वो चल पड़ेंगे, वे सोचे समझे बाप दादा की रस्मों को अपना दीन बना लेंगे। तो इनको यहाँ पे हक पसंदी और दानिशमंदी अकलमंदी की दावत दी जा रही है कि अपने अकायद और अमाल का जायजा लो, कहीं ऐसा ना हो कि अंधे बहरे बनकर जो है वो तासुब में मुब्तला हो, शैतान की पैरवी करो और फिर जहन्नुम में जाकर गिरो। और नारे क्या लगाओ कि हम जो हैं अपनी खानदानी रवायात के अमीन हैं, हम तो अपने अपनी अपनी कौमी जो रवायात हैं उनके अमीन है। तो क्या है, अवलौ कान शैतानु यदउहुम, अगरचे शैतान जो है खा शैतान जो है इनको बुलाता हो, यदउहुम इनको बुलाता है, इला अजाब सईर, आग भड़कती हुई की तरफ, अजाब भड़कते हुए की तरफ। यदउहुम हुम की जमीर किस तरफ है, उन लोगों की तरफ है, वो लोग जो कि खुद ये काम गलत काम करते हैं, है ना। शैतान तो फिर गलत लोगों गलत कामों की तरफ जो है ना उनको बुलाता है ना। और बाज लोग कहते हैं कि हम की जमीर बुजुर्गों अबाओ अजदाद की तरफ है, एक मानी इसके ये हैं आबा आना कि अबाओ अजदाद ने बुरी रस्मों की तरफ बुलाया, और एक राय ये है कि ये खुद इनके बड़े नहीं इनके अबाओ अजदाद नहीं खुद शैतान ने इनको भड़कती हुई आग की तरफ बुलाया। तो शैतान तो सबको बुलाता है, उनको भी बुलाया और इनको भी बुलाया। अब आप देखें कि ये दलाइल देने के बाद फिर अल्लाह ताला पैगाम क्या देते हैं, निचोड़, वमन युस्लिम वजहहू इलल्लाही, और जो शख्स हवाले कर दे, असलमा युस्लिमू का मतलब होता है सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना, और जो हवाले कर दे वजहहू अपने चेहरे को इलल्लाही अल्लाह की तरफ, इसके मानी ये हैं कि पूरी तरह अपने आप को अल्लाह की बंदगी में दे दे, अपनी कोई चीज अल्लाह की बंदगी से मुस्तस्ना ना रखे, सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे, और इसकी दी हुई हदायात हैं उनको अपनी जिंदगी का कानून बना ले। इसको कहते हैं असलमा युस्लिमु, सुपुर्द कर देना। तो असलमा जो है वमई युस्लिम वजहहू इलल्लाह, और जो कोई अपने चेहरे को, आप देखे चेहरा क्यों कहा, नफ्सहू क्यों नहीं कहा, चेहरा जो होता है ना जिस्म का सबसे अफजल सबसे सबसे अफजल और नुमाया हिस्सा है, सबसे बरतर और आला हिस्सा है, और आप जो हैं किसी भी को अपनी तरफ मुतवज्जो जब करना चाहती है तो उसका चेहरा अपनी तरफ करवाती हैं, आप कहती हैं कि मेरी तरफ देखें जरा, मेरी तरफ मुतवज्जो हो, अगर कोई पीट करे तो फिर क्या इसका मतलब है कि मुतवज्जो हुआ। और दूसरा ये कि चेहरा जिस तरफ होता है ना बाकी रुख सार पूरा जिस्म उस तरफ फिर जाता है, चेहरा जब होता है हाथ पांव जिस्म पांव टांगे सब उसकी तरफ हो जाती हैं। तो यहां पर जो है ये चेहरा कहकर कामिल सपुर्दगी जो है ना वो अल्लाह ताला ने मांगी है। दूसरा ये इस्लाम की असल हकीकत ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो, ना किसी दूसरे की तरफ, इंसान अपना सारा कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दे, कुछ भी बचा के ना रखे, है ना। मसलन बाज लोग जो है अगर ये कहते हैं कि फलां डॉक्टर जो है वो उसके हाथ में शिफा है, ये भी शिर्किया जुमला बन जाता है, अगर यूं ना कहें कि अल्लाह शाफी है, अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुछ करते थे, जितने उनके मौजदे क्या कहते थे, फा बेज़निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह ताला की मर्जी से। तो यहां पर भी ये है कि अपने चेहरे को इलल्लाही अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हवाले जो है वो कर दिया जाए, अल्लाह की दीवी जो हदायत हैं उन पर जो है वो चला जाए, तो अपना रुख अल्लाह की तरफ झुका दे, अल्लाह का हो जाए। मानी क्या है? फरमा बरदारी। और इसके अंदर अकायद भी आते हैं, इबादात भी आती हैं, अमाल भी आते हैं। और जैसे हम में से बाज लोग दीन और दुनिया को हमने फर्क करके रख दिया है, तफरीक कर दी है कि ये दीन है ये दुनिया है, तो हम कहते हैं जी अब दुनिया भी रखनी है। एक बात याद रखे, दीन है वे ऑफ लिविंग, दुनिया है प्लेस, जगह। तो दीन जो है वे ऑफ लिविंग पर अमल करने के लिए, वे ऑफ लिविंग पर अमल करने के लिए जगह चाहिए ना। दुनिया में रहेंगे तो अमल करेंगे ना, परिंदे थोड़ी है कि हवाओं में उड़कर जाके अमल करना है या मरने के बाद अमल करना है, नहीं। इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बंदगी करनी है, अपना आप अल्लाह के सपोर्ट करना है। तो इसके फिर मानी क्या है? हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। कौन सा सारा जमाना? अपना वजूद। दुनिया की फिक्र भी करें लेकिन अपनी सबसे पहले करें, और अपने जो चंद फुट का इंसान है ना इस पर इस्लाम को नाफिज करें। अब मसलन देखें, बाज लोग बुर्का पहन लेती हैं, पर्दा करती हैं, आवाज का पर्दा नहीं करती, आंखों का पर्दा वो नहीं करती है ना। घरों में जैसे महफिलें हैं वो होती हैं तो मखलूत होती हैं, शादी ब्याह की उनके यहां महफिलें मखलूत होती हैं, तो इसका मतलब मुकम्मल अपना आप अल्लाह के सुपुर्द नहीं किया। जब मैं और आप अपना आप अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, तो फिर क्या मतलब है? हर हर चीज, हर हर बात, हर हर तरीका, हर हर अमल, हत्ता के सोने का तरीका, बैठने का तरीका, लेने देने का, कपड़े खरीद रहे हैं तो बगैर जरूरत के नहीं खरीदेंगी। अच्छा, आप खरीद तो लिया है, अब सिलवाते वक्त सोचेंगी कि इस पर जो है फैशन में हद से नहीं गुजरेंगी कि लिबास पहनने का मकसद खत्म हो जाए। अब शादी करना, खुशी मनाना, चलो खुशी का मौका है, अच्छी बात है, लेकिन खुशी मनाते वक्त फराहा में मुब्तला नहीं होंगी, बतारा नहीं करेंगी, मुख्तालिन फकूर नहीं बन जाएंगी। तो एक काम नहीं, तमाम काम, एक काम हम करें और दूसरे को छोड़ दें, ये मतलूब नहीं है। मैं युस्लिम वजहहु इलल्लाह, और जो शख्स अपने आप को सुपुर्द कर दे अल्लाह के, अल्लाह का हो जाना, इखलास, इखलास नीयत और इखलास अमल, उसकी कैद है ये। यहाँ पे जो बताया गया है वो क्या है कि इंसान जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अल्लाह का हो जाए, ये चीज मतलूब है इस आयत में। दूसरी बात क्या की? वह हुआ मोहसिनन, और हो वो एहसान करने वाला, अमलन हो वो नेक। इसका क्या मतलब है? मोहसिन ही होता है वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, यहां पे फिर मोहसिन क्यों आया? दूसरी बात जो दूसरी शर्त है या दूसरी तारीफ क्यों की गई? सिर्फ असल में वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, आप यूं कह सकती हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वह हुआ मोहसिन जो है ना उस पर अमल करना है। ये तो जबान की नोक से आपने कहा कि अब मैं अल्लाह की हो गई। मसलन आप देखें कि कलमा पढ़ा और आप हर नमाज में क्या कहती हैं? इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, मैं क्या कहती हूँ? तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। दुआए कनूत मुकम्मल सुपुर्दगी का ऐलान है, उसमें क्या कहते हैं? नखलाउ व नतरुक, नहीं अफजुरुक, और बहुत सी बातें हम कहते हैं। अब हवालगी और सुपुर्दगी का ऐलान तो कर दिया है मगर अमलन वो रवैया अगर इख्तियार नहीं किया तो फिर वो मोहसिन नहीं है। इसलिए यहां पर अल्लाह ताला ने मोहसिनुन की सिफत को अलग करके नुमाया किया है कि बातें नहीं चाहिए लोगों, तुम्हारे अमल चाहिए। मुती और फरमा बरदार बन के दुनिया में जियो, अल्लाह के अहकाम के आगे तुमने सरे तस्लीम खम होने का ऐलान तो कर दिया है। नंबर दो, वह हुआ मोहसिनुन, अब उन अहकाम के मुताबिक नेक अमाल भी बजा लाओ। तो गोया के मोहसिनुन जो है वो कौन है? जो जो भी नेकी का काम करेगा, बात नमाज की होगी या ये कि किसी को पैसे देने की होगी, कोई वादा पूरी करने की होगी या मेहमान नवाजी की होगी, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक की होगी, कोई भी किसी भी काम को जब वो करेगा तो कमाल दर्जा खूबी और इखलास के साथ करेगा। तो इससे फिर क्या बात पता चलती है? नंबर एक के आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो, नंबर दो के अल्लाह की तरफ जब मुतवज्जो हो तो कमाल दर्जा यकसुई के साथ, फिर इधर उधर ना पलट कर देखे, फिर उसे अफसोस ना हो कि हराम मैंने क्यों नहीं हासिल किया, हलाल तो बहुत थोड़ा है, फिर उस पर उसे कनात करनी है, फिर पर्दा कर लिया है तो फिर पर्दा जो है सारी जिंदगी का पर्दा है, बस मरे तो फिर वो उतरेगा। अब ये नहीं है कि लोग बातें कर रहे हैं, हम मजे नहीं कर रहे, हमें वो लज्जतें नहीं मिल रही जो हमें दुनियादार लोगों को, आम जो पर्दे के बगैर हैं, कि फिर तो जिंदगी कट कर रह गई, कैदी बन गए, फिर तो कोई ये सब इधर उधर की जो हम बातें कर रहे होते हैं वो नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि कमाल दर्जा यकसुई होनी चाहिए, नंबर दो। नंबर तीन ये है कि फिर पूरी वफादारी होनी चाहिए, जान निसारी के साथ मुतवज्जो होना है। तो पलट पलट कर नहीं देखना, अफसोस नहीं करना, गमजदा नहीं होना कि मैं तो बेचारी, मैं किस मुश्किल में पड़ गई, नहीं ऐसे नहीं। और इसके साथ जो है फिर दूसरी बात क्या है, वहुआ मोहसिनुन, और वो एहसान के दर्जे की नेकी करें, यानी अच्छे तरीके से अल्लाह की रजा वाले अमल करें, अल्लाह को खुश करने वाले अमल करें। फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का, तो इसने फिर वाकई एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया। फकद इस्तमसका, मसाका के मानी क्या होते हैं? रोक लेना, चिमट जाना, थाम लेना, इंसाक, अपड़ चुकी हैं। तो अब यहां पे आप देखें अलिफ सीन ता आ गया है, तो उस वो उस क्या मतलब है, इसने सिर्फ चिमटी नहीं है, मजबूती से फिर आप चिमट गई, गोया के फिर इसके मानी ये हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐलान कर रहे हैं कि फिर उसने थाम लिया। अब उसको कोई अंदेशा नहीं है कि अल्लाह की रहनुमाई में जब वो चलेगा, जो युस्लिम है, जो असलम है, असलम कौन है, दरअसल असलम इस्लाम को कहते हैं, और मोहसिन एहसान के दर्जे की नेकी करने वाला। तो अब जो है इसने मजबूत सहारा जो है वो थाम लिया है, अब उसके लिए कोई भी परेशानी की, कोई दुख की, कोई गम की, कोई पछतावा नहीं है, है ना, कोई पछतावा नहीं है। अब तो बस उसने अपना आप जो है वो अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। तो उरवा किसे कहते हैं? ऐसी चीज जिसको मजबूती से पकड़ लिया जाए, कोई भी ऐसी चीज जिसका सहारा ले लिया जाए, तो उसने। और उरवा कड़े को भी कहते हैं, कड़ा, जैसे बाजू का तो होता है ना, जो किसी का कड़ा या जो एक सर्कल सा जैसे किसी विंडो के अंदर पड़ा हुआ है, आप उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि गिर ना जाए, रोशनदान है, दरवाजा है, बस के अंदर आप देखे खड़े हुए होते हैं और वो डले हुए होते हैं कड़े, तो आप उसको पकड़ लेती हैं ताकि आप गिर ना जाए, एक सहारा है जो आपने ले लिया। तो और उसका जो है बहुत साफ, जकड़ना, मजबूत करना, मिसाक, मिसाक भी इसी से, मिसाक मदीना, मिसाक लखनऊ, वो है कि मजबूत। तो उसका जो है यहां पर काबले भरोसा, मजबूत, उसके मानी में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि गोया के उन्होंने रब की तरफ मतवज्जो जब वो हुए, तो पूरे इखलास और हुस्न अमल के साथ जब वो अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू किया, तो अल्लाह के साथ ये जो वाबस्तगी है ना, ये एक मजबूत सहारा है, एक मजबूत रस्सी है। और जो शख्स जितना ज्यादा इखलास के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, खुद ही मौजें ले चली कश्ती को साहिल की तरफ, तो फिर क्या होता है कि फिर उसको ऐसा सहारा मिल जाता है जो कभी टूटने वाला नहीं, फिर उसको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो इसके दरअसल मानी ये हैं कि पूरी शरीयत पर अमल करना मजबूत कड़ा है, पूरी शरीयत पर, पूरे इस्लाम पर चलना ही मजबूत हलके को थामना है, और अब उसकी मजबूती टूटने वाली नहीं है। तो जो शख्स इसे मजबूती से पकड़ेगा, ना उसको लूटने का डर है, ना गिरने का खतरा है, ना चोट लग जाने की परेशानी है। क्यों? इसलिए कि उसने ऐसा सहारा थामा है जो उसको बिलाखिर अल्लाह ताला तक पहुंचा देगा। जब तक ये हल्का ये कड़ा थामे रहेगा, शैतान उसको धोखा नहीं दे सकता, उसको गुमराह नहीं कर सकता, उसको परेशान नहीं कर सकता। वह अकीबतुल उमूर, सारे मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ जो है वो रुजू करते हैं, अल्लाह ही के हाथ में है तमाम मामलात का फैसला। तो मतलब क्या हुआ कि दीन इस्लाम को अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बना लो, सिर्फ इस्लाम के नारे ना लगाओ, सिर्फ कलमा पढ़कर जो है वो इस्लाम लाने का और मुसलमान बनने का ऐलान ना करो, बल्कि अमलन हो वो नेक, अमलन हो वो एहसान के दर्जे की नेकी करने वाला और इस्लाम पर चलने वाला। और फिर होगा क्या, कोई कोई परेशानी नहीं है, कोई गम नहीं है, वकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। उसने तो गारे सौर में भी मदद की, उसने तो हिजरत के मैदान में भी मदद की, हिजरत के सफर में, बदर के मैदान में, कौन सा ऐसा मौका है जिसमें मुसलमानों की मदद नहीं की गई। तो असल बात क्या है, तू मेरा होकर तो देख, राह ना खोल दूं तो कहना, तू मेरी तरफ चलकर तो देख, मंजिल तक ना पहुंचा दूं तो कह देना, तू हाथ उठाकर तो देख, झोली फैलाकर तो देख, दुआएं कबूल ना कर लूं तो कहना। तो करके तो देखे जैसे अमल मतलूब है, फिर अल्लाह उनको कबूल ना कर ले तो कहना। तो असल बात क्या है कि जैसे एक बहन कह रही थी कि मैं भी पर्दा तो करना चाहती हूं लेकिन कुछ मुश्किलात हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अंदर के नफ्स को मुती करने की जरूरत है। और औरत तो ऐसी जात है कि वो जो चाहे कर लेती है। अगर बीबी आसिया फिरौन जैसे जालिम के महल में रहकर जन्नत में महल बनवा सकती है, उससे ज्यादा बेबस और मजबूर कौन होगा, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। जो बातें हम चाहते हैं ना मनवा लेते हैं, बेटे की शादी फलां जगह करनी है करके दम लेते हैं, भले उसमें फायदा हो नुकसान हो, फलां जगह जाना है जाके दम लेते हैं, फलां मुझे लॉकेट चाहिए लेके दम लेते हैं, है ना, फलां दावत फलां लोगों की करनी है करके दम लेते हैं, फलां चीज ऐसी होनी चाहिए ऐसे ही होनी चाहिए, ये घर छोटा है अब शोर नहीं लेना चाहता, नाक में इतना दम करते हैं कि वो दूसरे घर में जाने में मजबूर हो जाता है। तो जो हम चाहें अक्सरियत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम काम अपना करवा लेते हैं, जहां नेकी और दीन की बात आती है कहते हैं मेरा शोहर नहीं ना मानता। असल में असल बात यह है कि शोहरों को हमें बदनाम नहीं करना चाहिए, या रिश्तेदार या खानदान वाले या दोस्त अहबाब, तो ये बात नहीं है। मुझे जाती तौर पर यह महसूस होता है, मैं अपना जब जायजा लेती हूँ कि मेरे अपने मन में कमी है, तो जब इंसान के दिल अपना भी उसको कबूल नहीं करता, खुद सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते, फिर जो है अमल में बहुत कमजोरी हो जाती है। बात हलाल हराम की हो, बात जो है वो इस्लाम पर अमल करने की हो, बात पर्दा करने की हो, बात हज करने की हो, तो असल बात क्या है, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। शेर तो यूं शुरू होता है, इकबाल बड़ा उपदेशिक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका, है ना, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बसों में नमाजी बन ना सका। बड़े दिन हो गया कलमा पढ़े हुए मुझे और आपको, हम तो शौरी तौर पर, हमने पता नहीं कब कलमा पढ़ा, पढ़ा भी कि नहीं, हम मौरूसी तौर पर मुसलमान घर में पैदा, विरसे में इस्लाम मिला, और इसलिए मुझे और आपको इस्लाम की कदर नहीं है। वाइल्लाह याकिबतुल उमूर, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह ही के पास जो है तमाम मामलात जाएंगे, जिन्होंने सच्चा अमल किया और जिन्होंने शिर्क किया, जिन जो तौहीद परस्त बने और जो मुनाफिक और मुशरिक और काफिर बने। वमन कफरा, और जो कोई कुफर करे, फला यहजुन का कुफर हु, तो उसका कुफर आपको गम में मुब्तिला ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप परेशान ना हो, गलत काम करेंगे, शिर्क करेंगे, कुफर करेंगे, आप ना गमजदा हुआ करें, उसका अंजाम उन्हीं पर है। इलैना मर्जिउहुम, उन्हें पलटकर हमारी ही तरफ आना है, फनुनब्बिउहुम, फिर हम उनको बता देंगे, बिमा अमिलू, जो वो करते रहे, जो उन्होंने अमल किए तो हम उनको जल्दी बता देंगे। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। मैं और आप क्या सोचते हैं, मेरी और आपकी नीयतें क्या हैं, मेरे और आपके दिलों और दिमागों में क्या भरा हुआ है, अल्लाह जानता है। दुनिया से छुपा भी लें, लेकिन वो जात जो अलीमुम बिजाति सुदूर है, वो जो आंखों की खयानत भी जानती है, खाइनतुल आयुन, वो आंखों की खयानत भी जानती है, वो दिलों के राज भी जानती है, वो सबको जानती है, क्या वही ना जानेगी जिसने हमें पैदा किया, है ना। या अलमुसिर्रा, वो जानता है पोशीदा बात को और जहर को भी, है ना। तो सिर और जहर सब कुछ को कौन जानता है, अल्लाह जानता है। तो असल बात क्या है कि इंसान बदअमलियां करना चाहता है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपसे ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह पर तवक्कुल करके अपना काम, दावा का काम करते चले जाएं। तीसरी तरफ ये कह रहे हैं कि निमटना तो हमें है ना, जो सरकशी दिखाएगा, जो अमल करेगा वो हमारी गिरफ्त से बच नहीं सकता। और वो बचेगा कैसे, इन्नल्लाह अलीमुम बिजाति सुदूर, यहाँ पे ये नहीं कहा इन्नल्लाह अलीमुम बिजातिल, जो है वो अमल की बात नहीं की, सुदूर सीनों की बात की है। सीने में क्या होता है, दिल होता है, दिल में क्या होता है, इरादे होते हैं, असरार होते हैं और नियतें होती हैं, दिलों को खूब सही बात पता होती है। बाज़ औक़ात हम दूसरे पे बात डाल देते हैं ना, खुद बच जाते हैं, बड़ी इतनी खामोशी से हाथ अपना साफ करते हैं कि मुसीबत में दूसरा पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, जो हमारे जाहिर को भी हमारे बातिन को भी, सब बातों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जानता है, उसे खूब मालूम है कि किन लोगों के दिलों में शिर्क है, कुफर है, मुनाफकत है, कंट्राडिक्शन है, और जाहिरी तौर पर वो इस्लाम इस्लाम के नारे लगाते हैं। नुमत्तेहुम कलीलन, हम इनको फायदा देंगे, यानी नुमत्तेहुम, हम इनको जो है वो फायदा दे रहे हैं। मता क्या होता है, फायदा उठाना और फायदा, दुनिया का मालो मता, नुमत्तेहुम कलीलन, तो ये दुनिया में ये मुनाफकत करके, शिर्क करके, कुफ करके जो भी फायदे उठा रहे हैं, कलीलन बहुत थोड़े हैं। पूरी जिंदगी भी कोई शख्स 100 साल की भी गुजार ले तो क्या है, इल्ला शियतन औ दुहाहा, गोया के एक सुबह है, गोया के एक शाम है। तुम्मा नस्तरहुम, फिर हम उनको खींचेंगे, फिर हम उनको मजबूर करेंगे, उसके बाद हम जो हैं उन्हें खींच कर लाएंगे। तो उन्हें जो हैं वो कहां खींच कर लाएंगे, इला अजाबिन गलीज, सख्त अजाब की तरफ। और आप देख लें गैन लाम और जोए जो है गल्ज, इसके मानी क्या होते हैं, यानी गलीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात पीछे कही थी सूरत आले इमरान में, आप पढ़ चुकी, हाँ, कि अगर आप जो है तुंदखू होते, है ना, अगर आप जो है तुंदखू होते, हाँ, फदा गलीज अल कल्बी, और आपका दिल सख्त होता। तो ये जो गलीज लफ्ज है ये जाहिरी गंदगी के लिए भी इस्तेमाल होता है और बातनी गंदगी के लिए भी होता है, सख्ती के लिए भी होता है, दिल का सख्त होना, दिल का बुरा होना। तो यहां पर जो है जो बात बताई जा रही है वो क्या है, क्योंकि इस्तराब जो है यहाँ पे आप देखें, इस्तरार और इस्तरार के बाद इला का सिला आया है ना, इला, तो इला के मानी क्या है कि हम उनको जब अजाब गलीज की तरफ जो है वो खींचेंगे तो मजबूर होकर कुशा कुशा चले आएंगे, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के साथ, ऐसी उनकी बेबसी की, बेचारगी की कैफियत होगी, हम तो उनको घसीट ले होंगे लेकिन वो कुशा कुशा शदीद अजाब की तरफ घिसट कर आ रहे होंगे, है ना। जैसे किसी को बजाहिर लगे कि खुशी से जा रहा है लेकिन मुसीबत के साथ, तो दुनिया में तो ये अपनी मर्जी कर रहे हैं लेकिन वहां पे जब जंजीरों में जकड़े जाएंगे, जंजीरों में घसीटे जाएंगे, तो दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के फायदे उठाकर फिर अजाबिन गलीज की तरफ, और अजाबिन गलीज से मुराद जहन्नुम का अजाब है जो बड़ा ही सख्त अजाब है। और यहाँ पे उन लोगों को कहा जा रहा है जो अल्लाह को खालिक नहीं मानते, अल्लाह को मालिक नहीं मानते, और फिर अल्लाह की बंदगी जो है वो नहीं करते। वले इन सअलतहुम मन खलकस समावाति वल अर्दा, अगर तुम उनसे पूछो जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, लयकूलुन्नल्लाह, तो जरूर बजरूर ये कहेंगे कि अल्लाह ने। अब आप देख लीजिए कि ये फिर एक सवाल है کہ اہل مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قل، اللہ نے، اللہ نے، قل الحمد للہ، تو کہو الحمد للہ. کہ اس کا کیا مطلب ہے الحمد للہ کا؟ کہ شکر ہے تم اتنی بار تو جانتے ہو، اتنی تو مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب خالق اللہ ہے تو حمد بھی اللہ کی ہونی چاہیے. قل الحمد للہ، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ حمد ساری کی ساری اللہ کی ہونی چاہیے، کائنات میں سے کوئی حمد میں شامل نہیں ہو سکتا. بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. جب خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے، اور پھر ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، معبود بھی وہی ہونا چاہیے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہاں پہ اللہ کے ہر چیز کے مالک ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے. تو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، خالق ہے، تو کہیں جا کر چھپ کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ مالک ہے، ہر آن موجود ہے، کنٹرول کر رہا ہے، قابض ہے، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، اسی کے اختیارات ہیں. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین تو اللہ کے، پھر انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے وہ کیوں نہ اللہ کی بندگی کرے؟ بے شک اللہ غنی ہے اور حمید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر بندگی نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. ہمارے سجدے اللہ تعالی کی عزت میں اضافہ نہیں کرتے، اور سجدہ نہ کرنا اللہ تعالی کی عزت میں کمی نہیں کرتا. یہ ہے اس کا مطلب. حمید، حمید وہ جو تعریف نہ بھی کسی کی جائے تو خود ہی وہ قابل تعریف ہو. تو ہماری تعریف کرنے سے اس کی تعریف نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ تعریف ہے، وہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ محمود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ہے وہ بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب آپ دیکھیے، اہل مکہ چونکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اور اس مثال میں دراصل اللہ کے تخلیقی کارنامے، عجائبات، کرشمے اور خوبیاں، اور جو بے شمار اللہ کی حمد کے پہلو ہیں نا، وہ بیان کرنا مقصود ہے. کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہو جائیں جو بھی زمین میں ہیں، من شجرتن، درختوں میں سے، یعنی زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ بن جائیں، اگر وہ ہو جائیں، کیا؟ اقلامن، قلم کی جمع ہے اقلام، اگر وہ قلم بن جائیں، والبحر اور سمندر، یا مدہو، وہ دوات بن جائیں. آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ اس کی سیاہی بن جائیں، اور یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اس کی مدد کریں، کہ جتنے سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں، وہ سیاہی بن جائیں. من بعد ہی، اس کے بعد. اب آپ دیکھیں کہ جتنے زمین میں درخت تھے وہ تو بن گئے قلم، اور جتنے سمندر تھے وہ بن گئے سیاہی. اب اس کے بعد جو کچھ ہے یہ تو ہو گیا ختم. اب اس کے بعد کیا ہے؟ سب آتو اب ہورن، سات مزید سمندر لینے ہیں. پہلے سمندر ختم ہیں، وہ تو سارے سیاہی روشنائی بنی گئے، سات مزید سمندر، بحر کی جمع ابہر ہے، وہ کیا کریں؟ اب وہ بھی سیاہی فراہم کریں، مزید سات سمندروں کی روشنائی ہو. ما نفدت، ختم نہ ہو، کلمات اللہ، اللہ کی باتیں. یہاں پہ ختم نہیں آیا، جو ہم بات کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ اب کھانا میں نے پکا لیا، کام میرا ختم ہو گیا، ختم لفظ نہیں آیا، نفدت آیا ہے. اور نفدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ ختم ہو جائے لیکن अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी असल ही बाकी ना रहे, बिल्कुल ही वो खत्म हो जाए, असल फना हो जाए, खत्म। तो क्या है, मा नफिदत, बाकी ना रहे कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें। तो क्या है कि अल्लाह की बातें लिखने से फिर भी खत्म ना होंगी, क्योंकि नफिदा के से पहले मा आ गया है ना। अगर खत्म होता तो जैसे एक चीज जो है वो आप खत्म कर रहे हैं, है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, नफिदा आ गया है। और नफिदा जो है इसके मानी के अंदर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बजाहिर इसके मानी में यही चीज आती है कि एक काम जो आप कर रहे हैं वो खत्म हो गया है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मसलन अब जितने समंदर हैं वो स्याही बन जाएं और साथ मजीद भी हों और वो भी स्याही बनकर अल्लाह की हम्द लिख रहे हैं, अल्लाह के कमालात, करश्मे, नेमतें, अल्लाह ताला कहते हैं वो फिर भी खत्म नहीं होंगी। तो मानी क्या है कि किसी चीज का खत्म होकर बाकी ना रहना, फना हो जाना, है ना। नफा दामे असल चीज फना हो जाती है, हाथ से निकल जाती है। तो अब क्या है, स्याही भी खत्म हो गई और समंदर भी खत्म हो गए और कलम भी खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह की बातें ना खत्म हुई। तो कलिमातुल्लाह क्या है, कलिमातुल्लाह से मुराद अल्लाह के, अल्लाह की जो कारनामे और करश्मे है ना वो ला तादाद हैं, अल्लाह की खूबियां अनगिनत हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान तुम लिखना चाहो, उसको तहरीर के अहाते में लाना चाहो, सारी दुनिया के दरख्त खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया के समंदर खत्म होकर मजीद सात समंदर, फिर भी अल्लाह की बातें जो है वो खत्म ना हो। बड़ा खूबसूरत जो है ये एक इस्तियारा है और बड़ा खूबसूरत ये एक मिसाल है, मुबालगा है दरअसल, लेकिन दरअसल ये मुबालगा है नहीं, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला के करश्मे जो हैं उनकी मुकम्मल फहरिस्त तैयार नहीं की जा सकती। जमीन के अंदर जो कुछ है, आसमान के अंदर जो कुछ है, उनकी फहरिस्त नहीं बन सकती। अजल से अबद तक मजीद अल्लाह जो कुछ पैदा करता रहेगा, वो इंसान की अकल और इसका इल्म जो है अल्लाह के कलमात का अहाता करने से जो है वो कासिर है, बेबस है। अब आप देख लीजिए कि अरबों की तादाद में दुनिया में चीजें फैली हुई है। आप हैवानात को ही देख लें, 10 लाख की तादाद, और इसके अलावा अब तक मजीद रिसर्च आ रही है कि ये चीज पहली दफा जो है वो मिली है, है ना। इसी तरह जिस्मानी साख्त को देख लें, पत्तों को देख लें, अपने हाथों की उंगलियों को देख लें और हाथों की लकीरें, जितने इंसान है हर इंसान के हाथ की लकीरें दूसरे इंसान के हाथ की लकीरों से जो है वो मुख्तलिफ है। तो बहरहाल बात क्या है कि अल्लाह के कलमात यानी अल्लाह की नेमतें, करश्मे, कमालात लामहदूद हैं, अनगिनत हैं, इनका हदो हिसाब हो नहीं सकता। इन्नल्लाहा अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह जो है वो गालिब भी है, जबरदस्त है और हकीम है, जो चाहे करे, है ना, गालिब है और हिकमत वाला है। तो कायनात का कारखाना अल्लाह के गलबे से और हिकमत से चल रहा है, तो फिर करना क्या चाहिए, अल्लाह ताला की जो है वो हमद और सना जो है वो बयान करनी चाहिए। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्सिम वाहिदा, तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिला उठाना, ऐसे ही है इल्ला का नफ्सिम वाहिदा, जैसे कि एक इंसान को पैदा करना और जिला उठाना। कहते हैं उबई बिन खल्फ जो था उसने कहा कि अल्लाह ताला, तुम लोग कहते हो कि अल्लाह इंसानों को फिर पैदा करेगा, तो अबद अजल से लेकर अबद तक, शुरू से लेकर आखिर तक जितने इंसान पैदा हुए हैं अल्लाह ताला सबको मर चुके होंगे, अल्लाह फिर उनको पैदा कैसे करेगा। तो अल्लाह ताला ने यहां उसका जवाब दिया, मा खल्कुकुम वला बासुकुम, नहीं है तुम्हारा पैदा करना और तुम्हारा उठा खड़ा करना इल्ला मगर का नफ्सिम वाहिदा, जैसे कि एक इंसान का पैदा करना। अल्लाह तो कहता है कुन फयकून, हो जाता है। इन्नल्लाह समीउ बसीर, हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। तो इसका जो है वो क्या मतलब है, यानी अल्लाह ताला की किब्रियाई है, ये अल्लाह की हम्द है कि अल्लाह ताला जो है जब ये सारा काम कर सकते हैं तो फिर इस बात पर परेशान नहीं होना चाहिए कि अल्लाह मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कैसा करेगा। अल्लाह जो कुछ तुम इनकार करते हो अल्लाह वो भी सुनता है, जो अमल करते हैं अच्छे अल्लाह उनको भी सुनता है, جو کفر کرتا ہے اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے. تو اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے عملوں کو سنوارنا چاہیے. اور یہ پوری کی پوری سورت لقمان اور پورا کا پورا قرآن ہم سب کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, کبھی شوہر سے, کبھی بیوی سے, کبھی بچوں سے, کبھی سوسائٹی سے, کبھی پیئر پریشر, کبھی خاندان کی رسمیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہر صفت ایک تقاضا کرتی ہے. سمیع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سننے والا ہے, تو ہم اپنی باتوں میں محتاط ہوں, ہم کیسی باتیں کرتے ہیں. بصیر کا مطلب ہے اللہ دیکھنے والا ہے. ہم تصویریں لیتے ہیں اچھے پوز میں, ہمارے ہر عمل کی تصویر جو ہے اللہ بنا رہا ہے, کائنات بنا رہی ہے, ہے نا. غنی الحمید ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا کہا, وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, ہے نا. تو آپ ایک ایک بات کو دیکھتی چلی جائیں. لا يحب كل مختال فخور, ان اللہ لطیف خبیر. پھر غنی الحمید, تو ساری صفات, ہر خوبی اللہ کا نام ہے اور ہر نام جو ہے اس کا ایک تقاضا ہے, اللہ اس کا استعمال کر رہا ہے اور ہمارا فرض بن رہا ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بن رہی ہے کہ ہم اپنا اللہ سے بہترین تعلق پیدا کریں اور جائزہ لیں کہ میں اللہ کا حق دے رہی ہوں کہ نہیں دے رہی. تو جب سارا کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے.